समयसार परमागम निर्धराधिकार और 216वीं गाथा कल अपन ने चलाई थी। फिर कहने ये चल रहा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भोगों के बीच में भी कदाचित विद्यमान हो तो भी उसे बंध नहीं होता है, निर्जरा होती है। बात समझने में इतनी कठिन नहीं है लेकिन स्वीकार करने में बहुत कठिन है, क्योंकि जिन लोगों ने बाह्य की प्रवृत्ति और शुभाशुभ भावों के कारण ही सारा बंध और मोक्ष मान लिया है, उन जीवों की समझ में ये बात नहीं आती है कि हम चाहे जैसी प्रवृत्ति करें, चाहे जैसे होते रहें, खाते रहें, पीते रहें, और पर हमें बंध नहीं होगा और कर्मों की निद्रा होती रहेगी। कल मैंने करुणानी योग के हिसाब से थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि भरत चक्रवर्ती जैसे जीव जो 96,000 पत्नियों के पति थे, छह खंड की विभूति के मालिक थे, जिनके यहां 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े थे, वे भी जब ऋषभदेव भगवान की दिव्य ध्वनि करना शुरू हुई तो 60,000 बरस के लिए दिग्विजय करने को निकल गए। कैसी परिणति होगी आप सोचो, यहां भगवान की दिव्य ध्वनि रोजाना दिन में 7 घंटा और 12 मिनट माने 18 घड़ी, 6-6 घड़ी दिन में 3 बार खिरती थी, और ऐसे भी जीव थे वहां मौजूद कि जिन्होंने एक दिन का एक प्रवचन भी नहीं छोड़ा। नाम बता सकते हैं? ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि गणधर के बिना दिव्यध्वनि नहीं छिड़ती, और गणधर देव की उपस्थिति आद्योपांत अनिवार्य रहती है। तो भरत चक्रवर्ती के सगे छोटे भाई मां जाए, जिनका नाम था वृषभ सेन, वो ऋषभदेव भगवान के पहले गणधर थे, तो उनके बिना तो दिव्यध्वनि खिली नहीं, और जब तक खिरती रही कितने 1,000 वर्ष कम 1,00,000 पूरब तक, तब तक प्रतिदिन वे हाजिर रहे। बोला एक भाई एक मिनट नहीं छोड़ता है और दूसरा भाई 60,000 वर्ष के लिए लड़ने को निकल गया, और हम उसके गीत गाते हैं, भरत जी घर ही मैं बैरागी, भरत जी घर ही मैं बैरागी, उनकी मूर्तियां भी बना बना के लगाते हैं, और वृषभ सेन को कोई पूछता ही नहीं है, बहुतों को तो नाम तक मालूम नहीं है कौन है जी वृषभ सेन है? क्या कैसा विचित्र संयोग है? और वो कह रहे के वो के भी बंध नहीं है और निर्जरा है। तो मैंने करुणान योग से कभी तो प्रथमान योग से सिद्ध होगी, शास्त्र की लिखी है, तो करुणान योग से सिद्ध की थी कि जिसको सम्यक दर्शन होने के बाद प्रति समय असंख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि होती है, और तो शुद्धि की वृद्धि का नाम है निर्जरा, कर्म झड़ते हैं। अब जरा विचार करो, और जरा आज आ गए हमारे भाई साहब कल याद किया था, एक क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है, थोड़ी सी बारीक चर्चा है, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो उसके सत्ता में तो मिथ्यात्व पड़ा है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय है, आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम है, और देशघाती प्रकृति उदय में आ रही है। ऐसी अवस्था का नाम है संयोग सम। और सम्मा दर्शन के हिसाब से लगाएं तो अनंतानंदी क्रोधमान माया लोग मिथ्या तो मिश्र मिथ्या तो छह प्रकृतियां हैं सर्वघाती। तो इनका है उदयाभावी छह, छह नहीं है, उदय के अभाव रूप छह। जो उदय नहीं आ रही, उदय में नहीं आ रही, ऐसा छह है। सत्ता में तो पड़ी है, उदय में जब उनका काल पक गया तो उदय में क्यों नहीं आएंगी? थोड़ी करुणा योग की चर्चा है। वो तो अपना काल आ जाए तो फिर तो वे उदय में आए बिना रह ही नहीं सकती हैं। तो शास्त्रों में लिखा है करुणा योग के कि वे प्रकृतियां अप्रत्याखाना वर्ण रूप से परिणमित होकर उदय में आती हैं। जैसा उदय का अभाव है, यानी उदय का भी अभाव नहीं है वास्तव में, तो सत्ता में तो है ही और उदय भी आ रही, लेकिन वे अप्रत्याखाना वर्ण के रूप में उदय में आके खिर गई। तो उसका फल क्या था? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व तो हुआ नहीं और वे खिर गई, तो बिना फल दिए खिर गई ना। अब वो ऐसे निरंतर प्रति समय हो रहा है। तो कल कहा था कि भोग के काल में भी, युद्ध के काल में भी, सामायिक के काल में भी, पूजा पाठ के काल में भी, ऐसा ये वर्णन जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सामायिक करेगा तो खिलने लग जाएंगी और सामायिक नहीं करेगा तो नहीं खिलेंगी। क्यों? तो आखिर स्टॉक कम तो होगा, आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण है मिट जाने का। और कुब्बत थोड़ी रोष घनेरा, यह लक्षण पिट जाने का। क्यों? ताकत तो है भी, गुस्सा बहुत है, बकते हो गालियां, तो पिटाई नहीं होगी तो क्या होगा? क्या ताकत थोड़ी रोष घनेरा, यह लक्षण पिट जाने का। और आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण। तो यहां तो आमद थोड़ी भी कहां है? सात प्रकृतियों का तो बंद रुक ही है, आमद तो बिल्कुल जीरो है भाई साहब। और खर्च भरपूर हो रहा है, जिसका उदय में आ गया वो रुकती तो है नहीं, वो तो किसी ना किसी रूप में खिरती है और फल देती नहीं है। तो कितना खतरनाक कर्म मुफ्त में ही जा रहा है, और वो हर काल में। देखो, भोग के काल में भी, लड़ाई के काल में भी, इतना ध्यान रखना कि भोग से नहीं, बात हो रही भोग के काल में। नहीं कोई समझाए कि भोग से निद्रा होती, खूब भोगो कोई पूरे कर्म निद्रा हो जाएगी है? मतलब चौथे गुणस्थान की भूमिका में 24 घंटा सदुपयोग तो रह नहीं सकता, तो शुभोपयोग हो आगे अशुभोपयोग भी होता है। वो तो 6 महीना में एकाध समय थोड़े बहुत काल को अनुभव होता है, बाकी तो शुभ अशुभ नहीं रहता है ना। तो शुभ अशुभ भाव में रहेगा तो क्रिया भी शुभ अशुभ रहेगी। अब ऐसी शुभ अशुभ की क्रिया में, और वो तो निरंतर का काम है, प्रति समय असंख्य गुण निर्जरा। तो वो तो कभी ना कभी, कितना ही बड़ा स्टॉक हो मिथ्यात्व का, अनंतानंदी का, वो तो खत्म हो गई ना। इसलिए कह रहे कि भाई साहब भोग के काल में भी निद्रा होती है, ये समझाना चाहते हैं निद्रा अधिकार में। लोग क्या समझ लेते हैं? भोग से निद्रा होती है। अरे भाई, ये बाह्य की प्रवृत्ति तो जड़ की क्रिया है, और स्वभाषुभ भाव रागादि विकारी भाव है। भगवान आत्मा पर की क्रिया का तो कर्ता धर्ता है ही नहीं, और विकार का कर्ता भी अज्ञान अवस्था में है, अज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा तो उसका भी कर्ता नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी माने अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो है ना, जैसे गुरुदेव बता रहे थे सामान्य का प्रादुर्भाव, वो जो सामान्य आत्मा है ना, वो हमारे ज्ञान का गेय बन गया और हमारी श्रद्धा उसी में अपनापन करके स्थापित हो गई कि यही मैं हूं। बस इसका नाम ज्ञानी है। कितने शास्त्र पढ़े, कितने श्लोक याद हैं, कितने छंद याद हैं, उसका नाम ज्ञानी नहीं है। कितनी डिग्रियां हैं, उसका नाम ज्ञानी नहीं है। क्या क्या नाम ज्ञानी है यार? सारे जगत से भिन्न अपना जो भगवान आत्मा है, जिसमें रागादि यद्यपि वर्तमान पर्याय में हैं, फिर भी रागादि से जो जुदा है, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है, ये शरीर रूपी मंदिर में रहता है। ये शरीर को भी मंदिर कहा क्या? जैसे मंदिर में मंदिर जुदा है और भगवान जुदा है, है कि नहीं? ऐसे ही देह रूपी मंदिर में भगवान आत्मा विराजता है तो देह जुदी है और आत्मा जुदा है। अभी हमारे यहां वो नवदेव पूजन आ गई नहीं? कैसे आई, कहां से आई, मैं ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन ऐसा है ना कि अपना अपने पड़ोसी के यहां नौ ग्रह थे, है ना? शनि राहु मंगल वगैरह है ना, और उनके विघ्न दूर करने के लिए नवग्रह वे विधान पूजा पाठ करते थे, और तुम्हारा भैया शनि देवता की शांति हो जाएगी, फलानी हो जाएगी, तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। तो नवक नौ 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 का आंकड़ा हमारे दिमाग में घुस गया, तो हमें अपने ग्रहों की शांति करने के लिए जो पंडित जी ने, पंडित जी मैंने समझे ग्रह वाले पंडित जी, क्यों उनने जो वास्ता बताया कि ये करो, पूजा पाठ करो, ऐसा करो, ऐसा करो, हैं इसका दान दो, तिल का दान दो, जो भी बताया उनने, है ना, तो वो करते थे। तो हमारे जो पुराने कुछ लोग थे, समझदार थे कि क्या थे, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता उनके बारे में, उनने कहा कि वहां नहीं जाओ भैया, अपने यहां भी नौ ग्रह हैं, नौ नौ देव हैं, और नौ नौ के चक्कर में यहां भी नौ करने थे, अपने परमेश ही तो पांच ही थे, अब क्या करें, अब पांच के नौ कैसे बनाए, क्योंकि नौ के बिना तो ये मानेगा नहीं, पांच देवताओं से तो काम चलेगा नहीं। तो उन्होंने पंच परमेश थी और चार और जोड़ दें, कौन कौन से, जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन शास्त्र, जिन प्रतिमा, क्यों ऐसे उन्होंने गिनती नौ ही पूरी कर दी, अब नौ देवता हो गए। अब जरा सोचना, घबराना नहीं, जो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अपना आत्मा जो देह के अंदर विराजमान है, अपना नहीं, आदिनाथ का सही, जिन्हें केवल ज्ञान हो गया, समझ गया ना, अपना कहने में तुम्हें घबराहट छूटती हो, तो वो भी देव मंदिर में भगवान महावीर विराजमान है ना, तो महावीर जो सिद्ध शिला में विराजमान है, वे भी देव, ठीक है, फिर उनकी प्रतिमा भी देव, फिर जो प्रतिमा जिस मंदिर में रखा वो मंदिर भी देव, उनने जो बोला वो वाणी भी देव, अब मैं आपसे पूछता हूं कि नौ देवता सब बराबर क्यों हो गए, तो मंदिर भी देव और प्रतिमा भी देव और वो जिनकी वह प्रतिमा है वे भी देव। अब अभी अपन प्रतिमा को लें, तो उस प्रतिमा के चरणों में तो हम अपना माथा रखते हैं, रखते ना, उनको पैर से स्पर्श तो नहीं कर सकते, यदि कोई करे तो क्या हम उसकी टांग तोड़ देंगे, हम भगवान नहीं क्यों अपन बर्दाश्त कर सकते हैं सचमुच बोलो छाती पे हाथ रख बर्दाश्त करना चाहिए नहीं नहीं बर्दाश्त करना भी नहीं दे तो आप करते तो गलती करते हैं ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं। अब एक तो वे जिनके चरणों में हम माथा लगाते हैं देवी देव और एक वो भी देव जिसकी छाती पर हम पैर रखते हैं मंदिर में रखते ना पैर बाहर रख जाते हो क्या कहीं साहब धोके जाते धोके सही लेकर जाते हो क्यों धुले पैर भगवान की छाती पर रख सकते हो क्या करें मैं तो मंदिर भी थे क्योंकि तो नौ तो पूरे करने थे। अरे आगे को बढ़ना था कि भैया भगवान तो वे हैं जो सिद्धिशिला में अभी विराजमान हैं ये मंदिर में विराजमान तो उनकी मूर्ति है क्यों जिन प्रतिमा है सच्ची बात है ना ये पंच परमेश्वरी के अलावा है ना जिन जिन प्रतिमा जिन मंदिर क्यों ठीक है सबूत ठीक है तो हमारी तो ऐसी वृत्ति है। अब यहां तो वो कह रहे कि वो प्रतिमा भी नहीं वो प्रतिमा जिनकी है वो भगवान महावीर का आदिनाथ का जीव अभी तो सिद्ध दशा में विराजमान है कि देह देवल में देह को मंदिर कहा यहां देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है देह से जुदा है हे राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है भगवान आत्मा में राग है वर्तमान पर्याय में संसार अवस्था में नहीं हम नहीं कहते कि नहीं है लेकिन वो राग से जुदा है आत्मा देखो तो देह में आत्मा है आत्मा में राग है जिसमें आत्मा है वो भी आत्मा नहीं पर आत्मा में जो है वो भी आत्मा नहीं राग भी आत्मा का व्यवहार है स्वभाव नहीं है ना तो अब यहां ये कह रहे हैं कि वो देह की क्रिया वृतुब्बा शादी की पूजा पाठ की तीर्थयात्रा आदि की और वो वृत पूजा पाठ करने के स्वभाव ये और उसी समय व्यापार आदि के छह खंड को जीतने के अशुभ भाव ख्याल नहीं ना अब ये तीनों सम्यक दृष्टि के विद्यमान हैं आगे पीछे कभी पूजा पाठ कर रहा है कभी दुकानदारी धंधा कर रहा है कभी लड़ाई पे चला गया है कभी सामायिक में भी बैठ गया आत्मा का ध्यान भी कर रहा है अब ये कह रहे कि उसे निर्जरा हो रही असंख्यात गुणी तो कब हो रही कि हर समय तो इसका मतलब है कि हर समय हो रही तो उससे नहीं हो रही मतलब ये चीजें नहीं है तब भी हो रही इसका मतलब उससे नहीं हो रही समझ गया जब नहीं है तब भी हो रही ना तो तब भी किस चीज से हो रही उसकी खोज करना चाहिए कि जो चीज 24 घंटे विद्यमान है उससे हो रही क्योंकि 24 घंटे निद्रा हो रही क्यों वो निद्रा काय से हो रही जो 24 घंटे विद्यमान है उससे हो रही और 24 घंटे विद्यमान क्या है भगवान आत्मा है सर सम्यक दृष्टि के कि ये मैं हूं ऐसी मान्यता है ऐसा ज्ञान है ऐसा सिद्धांत है यह है कि नहीं ये 24 घंटे तीनों के समय भी ये बात विद्यमान है तो वो जो निर्जरा उस बात से हो रही कौन कि वो त्रिकाली ध्रुव मैं हूं ऐसी मान्यता अब सबसे बड़ा धर्म कौन हुआ देखो कि ये आत्मा त्रिकाली ध्रुव को जानना और ऐसा मानना कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं कोई बस ये सबसे बड़ा धर्म है देखो अभी घबराना नहीं, मैं शास्त्र के आधार से एक एक शब्द बोलूंगा। क्यों भैया? हम पूजा करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, दान देंगे तो हमें पुण्य बनेगा ना, ये हम और आप सब मानते हैं ना, हम भी करें, हम सब यही मानते हैं ना, वो 62% सच्ची है। ऐसी नहीं कि हम मानते हैं पदम जी पुण्य बनेगा और विषय के सहारे में बरतेंगे तो पाप बनेगा, ये नक्की है ना। और इसमें कोई मतभेद नहीं है कि मुमुक्षु मानते हो गैर मुमुक्षु नहीं मानते हैं, सबसे महाराज से जाके पूछ लो आप कि ये शुभ क्रिया और शुभ भाव, अशुभ क्रिया और अशुभ भाव, तो शुभ भाव से पुण्य बनता है, अशुभ भाव से पाप बनता है, और शुभ अशुभ क्रिया तो जड़ की है, ना कुछ बनता है ना छूटता है। अब हमने उस क्रिया में और उस भाव में धर्म मान लिया, अब वो निर्जरा तो धर्म है, तो वो हमारे शुभ भाव से जो हम पूजा पाठ वगैरह करें पुण्य बन रहा, और उन अशुभ भावों से पाप बन रहा, और उसी वक्त जो वो मान्यता हमारी अंदर बैठी है, उस मान्यता से कर्म की निर्जरा हो रही, और निर्जरा हो रही हो बंद नहीं हो रहा, तो आमदनी तो बिल्कुल खत्म, और खर्चा निरंतर चालू, तो पहाड़ भी खत्म हो जाता है। बाप बेटे को समझाता था या नहीं, भैया ऐसे बैठे बैठे खाओगे तो पहाड़ भी चला जाएगा, कुछ काम करो कि बाप दादों का बहुत होगा, ए भाई उससे काम नहीं चलेगा, पेट भर जाएगा लेकिन इज्जत जाएगी, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा, खुद कमाओगे तो होगा, बोलते कि नहीं बोलते। तो जब ऐसी पोजीशन हो गई, वो बात यहां समझा रहे, क्या कहा था देखो, वेद वेदक भाव दोनों, कल जो गाथा पढ़ी थी, नष्ट होते प्रति समय ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा, ना उभय की कांक्षा करे। भूतकाल के तो गए सो गए, अब वर्तमान के भुगत रहे हैं जैसे हैं, जो भी है हम उसमें कोई झगड़ा नहीं करते। अरे क्या करें बोलिए, हमारी और आपकी जो संयोग की स्थिति है, शरीर की बीमार है, घर में अनुकूलता नहीं है, पैसे की कमी है, तो भी हम भुगतते कि नहीं? और यदि पैसे की अनुकूलता है, शरीर स्वस्थ है, स्त्री बाल बच्चे अनुकूल हैं, तो भी अब हम उसे भोगते हैं, कह देते हैं बस, भुगतते और भोगते ही है ना, है तो एक ही बात है, क्यों? और वो ज्ञानी जन कहते हैं कि हम दोनों को भुगतते ही हैं, इतना सा फर्क है। हम कहते हैं क्या कि भोगते हैं और भुगतते, और वे कहते भैया दोनों का भुगतना ही भुगतना है, इतना सा फर्क है। वो इतने से फर्क में, पर वो कहते हैं मोर कोणी कांत, क्यों मेरे तो ये काम नहीं है, मेरा तो ये कर्तव्य नहीं है, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, मेरा काम तो एकमात्र जानना है। देखो नीचे लिखा ना कि ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा, देखो ज्ञायक माने जानने वाला, ज्ञानी रहे ज्ञायक सदा, ना उभय की कांक्षा करे, उन दोनों की इच्छा नहीं करता, ना शुभाशुभ क्रिया की और ना शुभाशुभ भावों की। ज्ञानी का काम तो एक, ज्ञायक दानंद देखने स्वभाव वाला रहने वाला है, और इसलिए कहते हैं कि भविष्य के भोगों की आकांक्षा वो क्यों नहीं करता, तो इसके लिए उन्होंने बताई कि वो जानता है, जो अपन ने अगली गाथा पढ़ी थी ना, कि इन दोनों के समय मिलता नहीं है, जब दांत है तब चना नहीं है, जब चना है जब दांत नहीं है, जब हमें भोगने का भाव होता है तो भोग सामग्री नहीं होती है, जब भोग सामग्री होती है तो भोगने का भाव नहीं होता है। देखो जरा गंभीरता से विचार करो। हम लोग कहते हैं ना, भैया मैंने जिंदगी में एक सपना देखा था, वो आज मेरा पूरा हो गया। कहा है सर रतन जी, रहते ना कि लग रहे धंधे में, हाथ उठाओ भैया। इधर पीछे चलो, होंगे कोई बात नहीं। मैंने एक सपना देखा था, क्यों तो एक ऐसा बहुत बढ़िया दिन मंदिर बना और आज वो मेरा पूरा हो गया। तूने किया ना, तेरे करने से हुआ है, क्यों बोलो विचार कर। हमारे हम तो चाहते थे कि आज हमारा आज ही बन जाए, क्यों ठीक उस दिन तो नहीं बना, अब तो बन गया, हमें संतोष है। जब जाने की तैयारी होगी तब भाव क्यों से कैसे कब खड़ा हुआ था कि भई हम निर्विघ्न तरीके से अपना स्वाध्याय नहीं कर सकते, अपना ये नहीं कर सकते, अपना ये नहीं कर सकते, इसलिए हम तो एक बना है। क्यों मंदिरों की कमी थोड़ी है, सच्ची बात तो यही है ना, क्यों ना सही। हम तो हमारे बाल बच्चे कोई ना कोई तो करेगा, उन्हें करना है, करना होगा। चलो तुम जी के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सारे जगत की बात कर रहा हूं। क्यों तो इनमें तो इतनी मूर्तियां विराजमान करनी, कल से को प्रक्षाल करेगा, कौन पूजा करेगा। ये माथे का सिरदर्द पहले दिन से, ये सिरदर्द क्या है, क्यों कि जिसके करने का भाव था वो तो जब हुआ तब चलने की तैयारी में, और नहीं तो कमर में दर्द है, यहां दर्द है, एक लाठी से लेके तो बैठ जाते हैं तो तुम्हारा सारा लिए बिना खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो जाते हैं तो तुम्हारे सारे लिए बिना बैठ नहीं सकते। क्यों बोलो भाई, सबकी हालत यही है ना। वो कहते हैं वेद वेदक भाव कभी इनका मेल नहीं होगा। हमने अपना गांव छोड़ा था, इधर ही है यहीं आसपास में, तो एक बमीना है ना, बमीना नाम तो सुना होगा ना, वहां गए। क्यों गए थे मालूम, कि हमारे मन में एक भाव था बचपन से कि अपने गांव में तालाब नहीं है, एक तालाब होना, बहुत अच्छा तालाब होना, जाके उसमें सुबह नहाएं धोएं बढ़िया। ऐसे बचपन में जब 5-7 वर्ष की उम्र होगी ना, तब ये भाव था कि एक तालाब बहाना अपने गांव में। तो उस वक्त गवर्नमेंट नई नई आई थी तो कहती थी तुम तालाब खोदो, तुम श्रमदान करो तो पैसा गवर्नमेंट देगी फिर आधा, और तुम गांव में तालाब हो जाए। लेकिन वो हमारे गांव में नहीं हो पाया, तो नहीं हो पाया क्यों, नाला तो चाहिए तालाब बांधने के लिए क्यों, कोई नदी नाला तो चाहिए ना, तब तो तालाब बने, नहीं था तालाब तालाब। फिर हमारे दिमाग में आया जब कैसे मूर्ख है तुम, कि गांव में तालाब होना, गांव में तालाब होना, ये गांव में तेरा क्या है, तू तालाब वाले गांव में जाके बस जाना, झगड़ा खत्म क्या क्या कर। इसलिए हमने अपना गांव छोड़ा, वो दुकान करी तो बमीना का तालाब देख के करी, गए तो वहां तालाब देखा तो बहुत बढ़िया तालाब था, और वहां जाके बस गए। और रोजाना हम और हमारे भाई साहब वो तालाब पर जरूर जाते थे, यानी अपने गांव को मैं तालाब बनाना कि तालाब वाले गांव में चले जाना, बोलो क्या सही है। यही अनंत सुखी होना कि जहां मोक्ष में अनंत सुख है वहां चले जाना, बोलो सही रास्ता क्या है। हम तो यही बनाएंगे, हम तो यही स्वर्ग बना, स्वर्गवासी होने के लिए रावण को स्वर्ग बनाएंगे। ये संयोग कभी पूरे होते हैं, इच्छाएं तो चक्रवर्तियों की पूरी नहीं हुई, जब पूरी होती ही नहीं है तो क्यों व्यर्थ की इच्छा करना, जो संयोग सुभाषुभ भाव हैं उन्हें सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। ये छठवीं का 216वीं गाथा में कहा। अब इसी के बाद में अमृतचंद्राचार्य देव ने एक बहुत बढ़िया कलश लिखा जो यही बात को बताता है। वो कलश क्या है पढ़ के सुनाता हूँ। वेद वेदक विभाव चलत्वात् वेद ते न खलु कांक्षते तेन कांक्षति न किंचन विद्वान सर्वतोप्यति प्रत्युपेति। इसका हिंदी पद्वानुवाद मैंने हरिगीत में बनाया, बनारसी दास ने भी बनाया नाटक समय सार, पर मैंने भी बनाया इन कलशों का पद्वानुवाद। बनारसी दास ने भी कलशों का ही किया है। दोनों में अंतर क्या है आपने तो गहराई से पढ़ा होगा ना। ये मेरे में तो अक्षरशा उसका पद्यानुवाद है भाषा बदल के, और बनारसी दास ने तो पूरा पढ़ा खूब अंदर से और अंदर घोंट के उसको संभाल लिया और फिर उन्हें जो मन में भाव आया वो उनने लिखा। वे उससे कोई बंध के नहीं चले और जब जो भाव अच्छा लगा वो लिख दिया, कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, और मरने तक उन छंदों को उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। मरने के बाद दूसरे उनके शिष्यों ने इकट्ठा कर करके वो बनाकर नाटक समयसार बना दिया। और फिर बाद में जब सोनगढ़ से हम लोगों ने ये छापा तो ये नीचे कौन से कलश का कौन से में भाव है वो निकाल निकाल के नीचे वो कलश लिख लिख के मिलान बैठाया, आगे पीछे किया, समझे ना। कई कलशों का छूट भी गया है और एक कलश में 10-10 छंद भी बना दिए हैं। वो है भावानुवाद और ये है पद्यानुवाद। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए एक के पढ़ने से दूसरे का काम नहीं चलेगा। ये मेरा पढ़ लिया तो बनारसी दास का उसको पढ़ लिया ऐसा मत समझना। उसी का पद्य वो अलग है, उसे भी पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़ लिया तो काम नहीं चलेगा। ये एक पहला सन है। बनारसी दास का भी सुनाऊंगा आपको और अपना भी सुनाऊंगा, दोनों ही सुनाऊंगा। देखो दोनों ही लिखे हैं, ये मेरा भी लिखा है नीचे बनारसी दास का लिखा है। दोनों का अंतर आप देखना और संस्कृत जानते हो तो संस्कृत से मिलान करना। हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं। कितना सरल है बोलो, इससे सरल और क्या करूं। हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव। सब ये वेद वेदक भाव हैं, एक एक पय में प्रलय को प्राप्त हो जाते। हमने जो इच्छा की कि मुझे ये चीज चाहिए और जब तक वो चीज जुटाई तब तक इच्छा खत्म हो गई। बहुत शौक से बनाया था थाली, आज ये बनाओ, आज बहुत सर्दी है तो पकोड़े बनाओ, मंगोड़े बनाओ, क्या क्या खाते हो मुझे पता नहीं, गजक लाओ, क्या क्या है, क्यों सब तैयार करके थाली रखी थी और वहां एक फोन की घंटी बजी कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और अस्पताल में भर्ती। बोलो क्या हो, खाओ ना। तीन दिन से मेहनत करके बनाए हैं, उठ के थाली छोड़ के भाग गए, क्यों बोलो। क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव। सब हम जिन्हें चाहें अरे उनका भोग हो सकता नहीं, क्योंकि पल पल प्रलय पावे वेद वेदक भाव। सब बस इसलिए सबके प्रति अति ही विरक्त रहे सदा। कौन ज्ञानी जन चाहे न कुछ भी जगत से, कौन निज तत्व विद विद्वान जन, जो अपने आत्मा को जानने वाले विद्वान हैं वो जगत से कुछ नहीं चाहते। कितनी सरल भाषा में ये बात मैंने लिखी। अब देखो बनारसी दास का पढ़ते हैं। जे जे मन वंशित बेला से भोगे जगत में, تیتے بیناسی کے سویرا کہنا رہتے ہیں اور جی جی بھوگے ابھیلاس چتے پرینام تیو بیناسی کے دھارا روپ ہوئے بہتے ہیں ایک تانا دوں ماہی تاتے بانچا پھرے نہیں ایسے بھرم کارا جے گمو رکھ چاہتے ہیں ستت سچیت رہیں پر سنا ہیت کریں یاتے گیان بنتے کو اوکشنک اونچک کہتے ہیں یہ بناسی داس کا ہے بس اتنی تیسری بات کہہ دی کہ یہ جو ایسے ہیں اس بات کو نہیں مانتے ہیں جانتے ہیں وہ مورکھ ہیں ہم نے مورکھ نہیں لکھا کیونکہ مول چند میں بھی نہیں لکھا کیا کیا لکھا دیکھو جے جے من وانچت بلاس بھوگ جن جن بھوگ بلاس کو ہم چاہتے ہیں بے سب بنا سیکھ ہیں کتنی ہی رکشا کرو بے رکشت رہتے نہیں اور جے جے بھوگ ابلاس چت پرنام بھوگنے کے ہمارے چت میں جو پرنام ہیں تیو بنا سیکھ وہ بھی بنا سیکھ ہیں اور دھارا روپ ہو کر کے بہتے رہتے ہیں وہ بھی بنا سیکھ ہیں وہ بھی بنا سیکھ ہیں اور دونوں کا میل کبھی بیٹھتا ہی نہیں ہم جس بھوگ کو چاہتے ہیں جب تک وہ آتا ہے تب تک یہ بھاو بدل جاتا ہے کیوں ایک تانا دوں ماہی دونوں میں ایکتا نہیں ہے تاتے بانگ چھا پھرے نائی اس لیے ہماری اچھا کبھی پوری نہیں ہوگی ایسے بھیم کارا دیکھو مورکھ چاہتے ہیں مورکھ لوگ ہی چاہیں گے ایسے کام کو تو ستت سچیت رہیں پرسو نہ کریں ہیت پر سے دوستی نہیں کرتے ہیں یاتے گیان بنت نجے کو اونچک کہتے ہیں اس لیے ہم گیانیوں کو اونچک نہیں چاہنے والا مانے گیائک کہتے ہیں چاہک نہیں کہتے اس مول میں کیا لگا تھا گیائک کہتے ہیں ان نے کہا اوانچک کہتے ہیں اچاہک کہتے ہیں چاہک نہیں کہتے ہیں دیکھو گمبھیرتا سے جو رائی کی اوٹ میں پہاڑ ہے بھائی صاحب ایک بات تو ایک بے اوانچک ہیں اب کہتے بھیا تمہاری اتنی سی بات کہہ رہے تم کہ یہ بھوگ اور شبھا سبھاو ان کی تم بانچھا مت کرو یہ تو جیسے ہوں گے بھوم کا انسار ویسے ہوں گے آپ انہیں روک نہیں سکتے آپ کی بھومکا آگے بڑھے گی منی اوستھا آئے گی تو رکیں گے شدھو پیوگ میں جاؤ گے تو رکیں گے کیول جان ہوگا تو رکیں گے تم کہو کہ ہم اسی اوستھا میں بھی رہیں اور پانچ اندریوں کے بھوگوں کی چاہے ہمیں نہیں رہے اور ویسی ہماری پروتی نہیں رہے تو یہ جگت میں سمبھو نہیں ہے تو کیا کریں کہ ہر چیز بھائی صاحب دھیرے دھیرے ہوتی ہے پہلے سمجھو کہ یہ میرے نہیں ہے میں ان کا نہیں ہے یہ میرے کیے نہیں ہوتے ہیں میرے نہیں کر چاہنے سے میں نہیں ہوتے ہیں یہ بچار کرو وہ کہتا اچھا ٹھیک ہے تو کل سے نہیں کریں نا کیوں کل سے نہیں کریں نا یہ چاہتے ہو تم دکانداری چھوڑ دیں سب ٹھنڈا پانی سب بند کر دیں یہ سب ہم بند کر دیں گے تمہارے لیے اسپیکر کہاں سے آئے گا اتنا بڑا پند کا لینا کہاں سے ہوتا ہم نے دن رات محنت کری ہے کیوں یہ پیسہ اکٹھا کیا ہے اس سے تو سارا چل رہا ہے تمہیں کیا ہے گدی پہ بیٹھے اسپیکر مل گیا جو ٹھوکنا ہے سو ٹھوک رہے ہو نہیں کریں گے کل سے ارے بھائی ہم یہ کہہ نہیں رہے کہ کرو کہ نہیں کرو ہم تو یہ کہہ رہے کہ آتما کر ہی نہیں سکتا آج تک تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کیا یہ تم سننے کو تیار نہیں ہو یہ تو اپنے آپ پتگل سے بنا ہے بھائی صاحب کیوں ٹورنامنٹ جی نے لکھا ہے نا
कि उन्होंने गोमर साहब की टीका लिखी सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो अंत में लिखी प्रशस्ति कि ये किसने बनाई, ये टीका का कर्ता कौन है, तुम्हारे में क्या लिखते हैं। मैं अपना परिचय देते हैं बुद्ध सुनो, मैं आत्म अरूप देगल खन मिलके भयो परस पर बंध। मैं तो आत्मा हूं और ये पुद्गल के स्कंद हैं, आहार वर्णा के स्कंद हैं, ये सब मिलके एक ऐसा ढेला बन गया। वो कुमार का चक्के पर रख देते ना ऐसा पिंड, मिलके भयो परस्पर बंद, सो असमान जाति पर आए। उसको शास्त्रीय भाषा में क्या बोलते हैं, असमान जाति पर्याय, क्योंकि दो जाति के, एक चेतन जाति एक अचेतन जाति, दो द्रव्यों से मिलके बनी। ये असमान जाति पर्याय है, ये मैं नहीं हूं, इसमें तो मेरा कितना हिस्सा है, एक और अनंत है पुद्गल परमाणु, और दोनों का मिलके बना, तो मेरा तो एक करोड़ की कंपनी उसमें एक शेयर है भाई साहब, और आप मेरी 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 कह रहे हो। अनंत पुद्गल परमाणु और मैं अकेला एक आत्मा, अब हमारी हालत क्या है। मैंने कहा कि भाई साहब फिर चाय मिलेगी, फिर पनी चाय जितनी बिरा दो। तो गया और वहां से उठा के डब्बे में से चाय रखी गद्दी पे लाके, मैंने कहा ये चाय है, चाय नहीं है तो क्या है, मैंने कहा ये चाय है मूर्ख, ये चाय है क्या, कौन है मूर्ख, ये चाय नहीं है। अरे चाय माने एक प्याले में लाओ वो पीने वाली। अब मैं पूछता हूं कि वो है चाय के ये चाय है, अब प्याले में क्या है, पानी दूध चीनी इलायची और ना मालूम क्या क्या डालती हैं बहने, और उसमें फिर थोड़ी चाय भी डालती हैं, फिर छन्नी से छानती हैं तो चाय को तो निकाल के फेंक देती है, और पानी पूरा का पूरा रहता, दूध पूरा का पूरा रहता, चीनी पूरी की पूरी रहती, इलायची पूरी की, क्यों, जो सब चीजें उसमें हैं उसका तो कोई नाम नहीं लेता, और जिसे निकाल के फेंक दिया उन्हें चाय कहते। वो चाय लाए तो कहे ठीक है असली चाय दिखाओ, तो मूर्ख बता दे कौन है मूर्ख। बोला कौन है, इसमें जीव का कितना सा हिस्सा है, ये तो सारा पुद्गल का खेल है, ये सब है पुद्गल को खेल, और इनसो नाई हमारो मेल, ये तो पुद्गल का खेल है। तो शास्त्र कैसे बना, तो वो कहते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलो तो करनो धरनो तनु को भिलो, कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। शास्त्र कैसे बने, मैं सच्ची बात कहूंगा, इसमें ज्ञान और राग दो चीजें तो मेरी मिली, जो मेरा ज्ञान था ना कर्मों का वो मेरा ज्ञान, और मुझे बनाने का राग हुआ वो राग, ये दो चीजें तो मेरी हैं। ज्ञान राग तो मेरो मिलो और कर्णो धरनो तनु को भिलो, जैसे एक हाथ ने ऐसी कलम उठा के ऐसी लिखी तो करना धरना तो इस शरीर ने किया, तनु माने शरीर, और ये भी निमित्त है, कागज नीचे कागज था और उस पर स्याही ऐसी फैलती गई और अक्षरों का आकार लेती गई, किसने लिखी, वो स्याही, स्याही ने अपना जीवन लगाया, उसमें उपादान कौन है, कागज मसी अक्षर आकार, कागज पर स्याही अक्षरों के आकार में बदलती गई और लिखिया अर्थ प्रकाशन शास्त्र बन गया। मैंने क्या किया जबरदस्ती कि तुम्हारा नाम क्यों लगाते हैं लोग, कि ये गलती है जिसमें मेरा ज्ञान और राग लगा था। पर इतनी सी बात थी इसलिए लोग मेरा कहने लग गए, लेकिन वास्तव में ये मेरा नहीं है। आचार्य कह रहे हैं हम और आपकी भी यही हालत है, जो संयोग हमें मिले हैं हम उनको वास्तव में भुगत रहे हैं, हमारे जुड़ाने से नहीं जुड़े। गंभीरता से विचार करो, हमने एक कलर मांगा था कि मेरा ऐसा सांवला कलर होगा, क्यों ये हमारी मांग के हिसाब से हुआ है। हमने अपना इतना कद मांगा था, हमने ये सड़ा सड़ा शरीर मांगा था, कितनी दवाइयां खानी पड़ेंगी तब चलेगी गाड़ी, क्यों हमने ऐसा घर मांगा था। हम तो चाहते थे कि राजमहल में मिलता, हमने हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ है। ये इतने संयोग मिले हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिले हैं, ये तो जैसे होना थे वैसे हुए। और ऐसे स्वभाव भी जैसे होना होते हैं वैसे होते हैं। ये कह रहे हैं मैं तो इसका जानने देखने वाला हूं, गलती तो ये हुई कि मैं जानन देखने वाला मिटके और करता धरता बन गया। ये गलती नहीं होती तो सबसे बढ़िया काम होता। अब उस बात को तो हम मानते नहीं हैं और अपने कर्तृत्व की बात माथे पर थूकते हैं। देखो जरा मैं गंभीरता से विचार करो, आजकल के छोकरे हो गए ना कि साहब कहां जा रहे हो, कि लड़की देखने। अच्छा पुराने जमाने में तो नहीं होता था ऐसा, क्या बात करते हो, 5 रुपए की हांडी खरीदते हैं तो ठोंक बजा के लेते हैं ये सारी जिंदगी का सौदा है तो ऐसे ही कर लेंगे। मैं कहा जाओ जाओ बेटा देख जाओ, देख नहीं ठोंकना बजाना नहीं, नहीं तो ठुक पिट के आओगी। अरे अपनी सहधर्मिणी की 5 रुपए की हांडी से तुलना करता है, शर्म नहीं आती? कहना ही साहब मैं बराबर जिंदगी भर का सौदा है तो तुमने जिंदगी भर के जो सौदा किए हैं वो सब देख देख के किए हैं, ये माँ बाप जिंदगी भर का सौदा है कि नहीं? तूने सिलेक्शन किया होगा, किसी ने आज तक ऐतराज किया कि इस काली कलूटी को मैं अपनी माँ नहीं मानूंगा, जिसके पैदा हो गए चुपचाप स्वीकार कर लिया ना, कहता उसमें मेरी क्या गलती है, ये तो पापा की गलती है। हाँ पापा की होगी, अब तू ऐसी गलती मत करना बेटा। बाल बच्चे एक से एक बढ़िया सुंदर पैदा करना, भाई बहन क्यों माँ बाप जैसे मिल गए वैसे स्वीकार। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अंधा है तो मैं इसे अपना भाई नहीं मानूंगा, जैसा पैदा हो गया ना, तो बाल बच्चे तो अब तेरे हाथ की बात है कि मैं क्या करूंगा, जैसे हो जाएंगे हो जाएंगे। तो माँ बाप जैसे मिले वैसे चलते हैं, भाई बहन जैसे मिले वैसे चलते हैं, बाल बच्चे जैसे मिले वैसे चलते हैं, पड़ोसी जैसे मिले वैसे चलते हैं, और सारी अकल तू अकेली एक पत्नी के खोल में वहीं लगा लेगा। ये अभी मौका मिल गया है सो भाई साहब, 50 साल पहले नाई और ब्राह्मण कर जाते थे सगाई क्यों बड़े बड़े राजकुमारियों की, अभी चुपचाप मान लेती थी कि नहीं। ऐसे लोग यहां भी हजारों बैठे होंगे कि जिन्होंने छात फेरा पढ़ने के पहले पत्नी ने पति का, पति ने पत्नी का मुंह नहीं देखा होगा। ये बात अलग है कि बोलने की हिम्मत नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं भी ऐसे ही हूं। لیکن ایسے لوگ یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ابھی بہتوں کے اٹھوا ہے تو اٹھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ساری زندگی شانتی سے نکال لی اور بھاونا بھاتے ہیں کہ میرے اور اگلے بھو میں بھی سمبندھ بنا رہے. اور جو چھ چھ مہینہ دیکھتے ہیں اور چھ مہینے میں طلاق کا نمبر آ جاتا ہے, دیکھ دیکھ کے کیا نحال کیا ان نے. اور کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے وہ کیا ہے, لب میرج ہے, بہت دیکھ دیکھ کے پسند کی. اور جب سامنے دیکھتے ہیں تو کبھی اس میں یہ چھ ہے, اس سے تو ہزار گنی اچھی, ہم پچیس بتا دیتے نہیں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. کیوں جی, بھگوان مہاویر کو 2500 برس ہو گئے. یعنی بھگوان مہاویر سے پوچھا جاتا کہ اس کی شادی کہاں ہوگی, کس لڑکی سے ہوگی, تو یہ بتا سکتے تھے کہ نہیں بتا سکتے تھے؟ اس کا مطلب 2500 برس پہلے اتنا ہے تو یہ عقل کہاں کی لگا تھا؟ شاستر نے لکھا ہے کہ رشبھ دیو نے بتا دیا تھا کہ راجا سدھارتھ کی رانی ترسلا سے مہاویر کا جنم ہوگا, یہ ماریچ اتنے پہلے وہ نکی تھا. ارے اس میں تو ماتھا پتی کرتا ہے, جگت میں تیری ماتھا پتی چلتی نہیں, یہ سنجوگ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے اور سنجوگی بھاپ بھی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں. تو یہ گائک بھگوان آتما ہے, وہ تو ہے اور تیرا ہے, بس تو یہ گائک بھاو میں رہے, یہ دھرم ہے. اور ایسا دھرم اپنے جو گائک بھاو میں اپنا اپن کا دھرم, اس کا نام ہے سمیک درشن. اور جو جس کے ودمان ہے اس کے نرنتر نرجرا ہوتی ہے اور بند نہیں ہوتا ہے, یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے.